मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 20 दिसंबर 2017 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे एक मेल मिला था, हालांकि इसे मिले हुए लगभग एक सप्ताह हो गए, लेकिन इस बीच मैं उस विषय पर बात नहीं कर सका। लेकिन उस मेल में जो विषय सुझाया गया था वह अपीलिंग था, मुझे लगा कि नहीं, इस पर बात की जानी चाहिए। बहुत ही प्यारा विषय उन्होंने दिया था एक स्टूडेंट ने, और अंग्रेजी में वे शब्द हैं कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फेक्शन। हिंदी में इसमें अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने पूछा था कि सर, ये जो कंटेंटमेंट होता है और जो सेटिस्फेक्शन होता है, इन दोनों में क्या फर्क है। मित्रों, आज मैं इसी पर आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। आप जब डिक्शनरी खोलेंगे इनके हिंदी के अर्थ जानने के लिए, तो ये दोनों आपको पर्यायवाची मालूम पड़ेंगे। कंटेंटमेंट का अर्थ आपको संतोष पढ़ने को मिलेगा, संतुष्टि पढ़ने को मिलेगा। ठीक इसी तरह से जब आप सेटिस्फेक्शन का हिंदी शब्द जानना चाहेंगे, तो वह भी लगभग इन्हीं शब्द को दोहराते हुए आपको नजर आएंगे, संतोष, संतुष्टि आदि आदि। लेकिन क्या वाकई में ये दोनों एक हैं? और मित्रों, इसी को लेकर के आज आइए हम लाइफ मैनेजमेंट पर में कुछ बातें करते हैं। इसमें जो एक बारीक अंतर मुझे जान पड़ता है, मित्रों आप लोग अपनी तरफ से सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, वो यह है कि जब हम कंटेंटमेंट कहते हैं, देखिए अर्थ तो इसका भी मुझे यही लगाना पड़ेगा, संतोष और संतुष्टि। लेकिन चलिए यहां सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा अंतर कर देता हूं। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा सुनते समय कि कंटेंटमेंट को मैं यहां कहना चाहूंगा संतोष, और जो सेटिस्फेक्शन है इसे मैं कहना चाहूंगा संतुष्टि। संतोष और संतुष्टि, ये देखिए, ये अंतर केवल मैंने आपसे बातचीत करने की सुविधा के लिहाज से किया है, अदरवाइज मैं बता चुका हूं कि ये दोनों लगभग पर्यायवाची जैसे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल एक दूसरे के समानार्थी ही हैं, इनमें अंतर डेफिनेटली है, और शायद मैं बहुत गलत नहीं होऊंगा, इसका फैसला आप लोग करेंगे। तो जब हम कंटेंटमेंट कहते हैं यानी कि संतोष, तो मुझे लगता है कि यह कुछ आंतरिक संतोष जैसा भाव है, जैसे कि किसी को, जैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपने अंदर से बिल्कुल संतोषी जीव हूं, जो मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, मेरी अपनी कोई इच्छाएं नहीं है, मैं अपने जीवन से पूरी तरह से संतोष से भरा हुआ। ये हो गया कंटेंटमेंट, राइट। जब हम सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं यानी कि संतुष्टि की बात करते हैं, तब मुझे लगता है कि वहां थोड़ा सा एक अंतर दिखाई देता है, और वो अंतर ये है कि मैं कुछ चाहता हूं और जब अपने चाहे हुए को पा लेता हूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन फील होता है, मुझे संतुष्टि की अनुभूति होती है। जैसे मान लीजिए कि मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है, और जैसे मुझे पानी मिल जाता है पीने के लिए तो मुझे संतुष्टि लगती है। मैं आईएएस बनना चाहता हूं, जब मैं आईएएस बन जाता हूं तो मुझे फिर सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं कोई काम करना चाहता हूं, जब मैं उस काम को पूरा कर लेता हूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये मूलभूत दोनों में अंतर मुझे जान पड़ता है कि कंटेंटमेंट में आप कुछ चाहते ही नहीं हैं और आप संतोष का जीवन जी रहे हैं, संतोषपूर्ण जीवन जी रहे हैं। सेटिस्फेक्शन में आप कुछ चाहते हैं और जब मिलता है तब आप सेटिस्फाइड अपने आप को महसूस करते हैं, और जब नहीं मिलता है तो फिर आप असंतुष्टि का भी अनुभव करते हैं कि नहीं मिला, फिर मन में एक तरह का चिड़चिड़ापन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा, निराशा पैदा होगी। ये सारी चीजें सेटिस्फेक्शन के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन कंटेंटमेंट के साथ तो कुछ अपेक्षा ही नहीं है ना। मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, दोनों ही स्थिति में आप एक जैसे हैं। तो मित्रों, ये मूलभूत अंतर है, और इस अंतर को जान लेने के बाद आइए अब हम थोड़ी सी आगे की बातें करते हैं। जो सेटिस्फेक्शन शब्द है, मुझे लगता है कि ये वेस्ट से डिराइव किया हुआ शब्द होगा। पश्चिमी देशों में सेटिस्फेक्शन की बहुत ज्यादा बात होती है। और अगर हम सेटिस्फेक्शन को भौतिक जगत से जोड़ देते, क्योंकि किसी चीज की हम इच्छा करते हैं और इच्छा की पूर्ति के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो सीधी सी बात है कि यह एक भौतिक जगत की मनोवैज्ञानिक स्थिति है। भौतिक जगत यानी कि इस दुनिया में हम कुछ पाना चाहते हैं और जब मिल जाता है तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, और नहीं मिलता है तो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, राइट। अब इससे होता क्या है, अब दोनों के थोड़े से आप अंतर को समझ लीजिए और उनके परिणाम भी देख लीजिए। शब्द का अर्थ जान लेना अलग बात है, लेकिन हमें परिणाम ज्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम भौतिक जगत से अपने सेटिस्फेक्शन को जोड़कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम विकास के रास्ते पर आगे चलते हैं। देखिए, जब हम किसी चीज की इच्छा ही नहीं करेंगे तो बट नेचुरल है कि हम कोशिश भी नहीं करेंगे। इच्छा, कोशिश से पहले इच्छा का होना अनिवार्य है। आप खुद सोच करके देखिए, अपने जीवन का थोड़ा सा मूल्यांकन कर लीजिए कि आप किसी भी चीज के लिए जब आगे बढ़ते हैं, उसे पाने के लिए, उसे करने के लिए, तो उससे पहले उसकी इच्छा अपने अंदर लाते हैं। मन में एक डिजायर पैदा होती है कि नहीं, मुझे ये पाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, और फिर हम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जब करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये बात अलग है कि हम कितना कर पाते हैं, हमें वो चीज मिल पाती है या नहीं मिल पाती। लेकिन ये भी तो सही है कि सभी भले ही ना मिल पाए, लेकिन कुछ चीजें तो मिल ही जाती हैं। और इस तरीके से जो ऐसा समाज है वो बढ़ता चला जाएगा। इसे ही हम कहते हैं भौतिकवादी समाज, या कह लीजिए उपभोक्तावादी समाज, जहां लगातार नई नई इच्छाएं पैदा होती जाती हैं, नई नई संतुष्टि के लिए हम प्रयास करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं इसी पर टिकी हुई फिलॉसफी है कि इच्छाएं अनंत होती हैं, उनका कभी अंत नहीं होता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा होती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी पैदा होती है, और इस तरीके से व्यक्ति का जीवन लगातार दुखमय होता चला जाता है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं। इस पर गौतम बुद्ध आकर के रुके और फिर उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी। अब जो संतोष जो शब्द है मित्रों, अब देखिए कि एक नीति परक एक बड़ा खूबसूरत दोहा है, उसकी पहली लाइन तो मुझे अभी तुरंत ध्यान में नहीं आ रही है, लेकिन नीचे की लाइन है कि जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान, गज धन रथ धन बाज धन और रतन धन खान। लीजिए पहली लाइन भी याद आ गई, गज धन हाथियों की संपत्ति, गज धन बज धन खान धन और रतन धन खान, चलिए जोड़ लीजिएगा। जब आवे संतोष धन, जब संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाता है, सब धन धूरी समान, उसके प्राप्त होते ही सारे जो संपत्तियां हैं, ये जो गज की संपत्ति और घोड़ों की संपत्ति और रथ की संपत्ति और हीरे और जवाहरातों की जो संपत्ति है, सबके सब धूल जैसी हो जाती, क्योंकि मन के अंदर एक संतोष का भाव पैदा हो गया। इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा प्रसिद्ध कोट भी है जो अक्सर आपको शायद कहीं पढ़ने को मिल जाता होगा कि गरीब वह नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब वह है जो और चाहता है। यानी कि कोई अरबपति है, खरबपति है, लेकिन वो और चाह रहा है, और चाह रहा है, तो बट नेचुरल कि वो गरीब है, क्योंकि उसके मन में अभी भी चाहत बनी हुई है। इसीलिए किसी एक दार्शनिक ने यह भी कहा कि भगवान के दरवाजे पर सभी गरीब ही होते हैं, क्योंकि सब मांगने गए हैं। जब आप मांग रहे हैं तो बट नेचुरल कि आप किसी कमी को का महसूस कर रहे हैं, और कमी है तो फिर आप गरीब हैं, ये हमारे यहां कहा जाता है। इसका क्या परिणाम हुआ मित्रों, अब मैं आ रहा हूं आपको कंटेंटमेंट पर। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि हम इतने ज्यादा संतोषी हो गए कि हमने अपनी इच्छाओं का विनाश ही कर दिया, उन्हें कुचलकर खत्म ही कर दिया, उनका दमन कर दिया। अब जब हमने अपनी इच्छाओं को ही खत्म कर दिया, शून्य कर दिया, तो सीधी सी बात है कि जो भी हमारी परिस्थितियां हैं हम उसी में खुश हैं, जो भी चीजें हमारे पास हैं हम उसी में ही खुश हैं, और अगर नहीं है तो भी दुखी का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अंदर से हम इतने ज्यादा संतोष से भरे हुए हैं कि असंतोष जैसी चीज हमारे आसपास फटक ही नहीं सकती। तो जब मैं वाकई में इतना इच्छा विहीन हो गया हूं और इतना ज्यादा संतोषी बन गया हूं, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर मैं क्यों करूंगा, क्योंकि जब आवे संतोष धन, और संतोष धन तो बिना कुछ किए आ रहा है, तो करने की क्या जरूरत है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर, सोच करके देखिए। ऐसा समाज आलस्य से भरा हुआ समाज हो जाएगा, ऐसा समाज अकर्मण्य समाज हो जाएगा, भौतिक दृष्टि से ऐसा समाज प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा। भौतिक दृष्टि से आप कह लीजिए, वैज्ञानिक दृष्टि से आप कह लीजिए, क्योंकि उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, जो मतलब एक चुटकुले जैसा ही है, लेकिन आपको शायद थोड़ा सा मजा भी आए। हुआ ये कि एक आदमी था, एक यंग आदमी के मतलब नौजवान था, 25-28-30 साल का रहा होगा, और गर्मी के दिनों में एक पेड़ के नीचे बड़े आराम से लेटा हुआ था। दोपहर का समय था और लेटा हुआ था। तो एक विदेशी जोड़ा, मतलब हस्बैंड वाइफ जो फॉरेन से आए हुए थे, घूम रहे थे, टहलते टहलते उन्होंने देखा कि एक नौजवान जो है पेड़ की छाया के नीचे बड़े आराम से लेटा हुआ है, हल्की हल्की नींद भी ले रहा है। उसके पास पहुंचे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा। आश्चर्य इस बात का लगा कि दिन का समय है, दोपहर है, और ऐसे समय में जबकि काम करना चाहिए, और ये नौजवान है, कोई बीमार भी नहीं है, बूढ़ा भी नहीं है, और ये आराम फरमा रहा है, लेटा हुआ है, बताइए ये भी कोई बात हुई। तो उन्हें कुछ आश्चर्य जैसी चीज ये लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसके पास गए, ये जो विदेशी थे उसके पास गए, तो उनसे पूछा कि भैया तू ये बता कि तू काम वाम क्यों नहीं करता, तुमको काम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं काम करके क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा अरे काम करके क्या करोगे, काम करके काम करोगे तो तुम पैसे कमाओगे। तो बोले पैसे आ जाएंगे तब क्या करूंगा। तो अरे पैसे आ जाएंगे तो अच्छे से मकान बनवाओगे, अच्छे से रहोगे तो मकान बनवा के क्या करूंगा। अरे जब मकान बनवा लोगे तो शादी ब्याह करोगे, शादी ब्याह करके क्या करूंगा। अरे शादी ब्याह करके फिर बच्चे होंगे, तुम अच्छे से सुख से आराम से रहोगे। तो बोले वही तो कर रहा हूं मैं, आराम से ही तो रह रहा हूं। अब आप देखिए कि जब मैं बिना ये सब किए अभी आराम फरमा रहा हूं या आराम से रह रहा हूं, तो ये काम करके अंत में जाकर के जो मुझे आराम मिलेगा वह आराम मेरे किस काम का। वही तो मैं अभी कर रहा हूं, आराम ही तो कर रहा हूं, तो मकान बनवाने की जरूरत ही क्या है। ये एक फिलॉसफी है। अब आप देखिए घूम फिर करके फिर से हम उस संतोष वाली स्थिति पर आ गए। तो जो तर्क होते हैं मित्रों वो तो बहुत ही प्रबल होते हैं। तर्क से तो आप किसी भी चीज को सिद्ध कर सकते हैं, और अगर तर्क से सिद्ध कर देते हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि वो चीज भी व्यावहारिक रूप से सही होगी। तो मित्रों ये जो दो शब्द थे जिनके अंतर के बारे में आप में से ही किसी एक मेरे प्रिय श्रोता ने जानना चाहा था, तो मुझे लगा कि ये विषय मजेदार विषय है, थोड़ा सा हट करके भी विषय। और फिर मुझे ये भी लगा कि नहीं, जो स्टूडेंट आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर होता है मेन एग्जामिनेशन का, उस दृष्टि से भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मित्रों ये कुछ बातें मैंने आपके सामने अपने मन की रखी हैं, आप सब भी इस पर विचार करें। और इसी के साथ ही मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।